एस्तर अध्याय दो, अध्याय दो पद एक और दो। इन बातों के बाद जब राजा शयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। ये उत्सव जो वो मना रहे थे वो उसके यूनान आक्रमण और दो ऐतिहासिक युद्धों की तैयारी में था। इस उत्सव के बाद वो यूनान के विरुद्ध युद्ध करने गया परंतु हार गया। जब वो यूनान से असफल लौटा तब उसे रानी वस्ती की याद आई। इस पर उसके सेवक ने कहा, आप सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजन क्यों नहीं करते कि कोई परम सुंदरी उभर आए? अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अध्याय एक और दो के मध्य लगभग 4 वर्ष का अंतराल है। अध्याय दो पद 3 और 4। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशन गढ़ के रणवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। अब उनमें से जो कुवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वो रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। फारस के शूशन नगर को राजा ने अपने शीतकालीन राजधानी बनाया था। वहां उसका राजमहल था। शूशन नगर ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता था, इसलिए उसका ग्रीष्मकालीन राजमहल कहीं और था, परंतु सर्दियों में रहने के लिए वो एक अति उत्तम स्थान था। इस नगर में एक कुंवारी रहती थी जिसका नाम एस्तर था। वो एक यहूदी युवती थी। रिश्ते में उसका एक भाई भी था जिसका नाम मोर्देकाई था। मोर्देकाई शौल वंश और बिन्यामीन गोत्र से था। अध्याय दो पद 7 से लेकर 12 तक। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वो लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशन गढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वो युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वो उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मोर्देकाई तो प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वो शयर्ष राजा के पास जाएं, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। क्या आप ऐसी ब्यूटी पार्लर की कल्पना कर सकते हैं जो आपका श्रृंगार करने में 12 महीने लगाए? अध्याय 2 पद 13। इस प्रकार से वो कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वो चाहती थी कि रणवास से राजभवन में ले जाएं वो उसको दिया जाता था। सब सुंदरियों को बुलाया गया और उन्होंने एक शाम राजा के साथ व्यतीत की। उसके बाद उन सबको राजा के हरम में रख दिया गया कि वहां उनकी देखरेख की जाए। उनमें से कोई भी सुंदरी राजा के पास तब तक नहीं जा सकती थी जब तक कि राजा उसे प्रसन्न होकर उसे ना बुलाए। अध्याय 2 पद 15। जब मोर्देकाई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकाई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा, और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। कहने का अर्थ है कि उसने कोई विशेष वस्त्र धारण नहीं किए थे तो भी उसे पसंद किया। अध्याय 2 पद 16 से लेकर 20 तक। यों एस्तर राजभवन में राजा शयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तर की जेवनार कहा, और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरे बार इकट्ठी की गई तब मोर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा था, और एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मोर्देकाई की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मोर्देकाई दरवाजे के पास घूम रहा था तब उसने राजा के नौकरों को राजा का वध करने का साजिश रचते हुए सुना। अध्याय 2 पद 22 और 23। ये बात मोर्देकाई को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई, और एस्तर ने मोर्देकाई का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। जब जांच पड़ताल होने पर ये बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया।